जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित करना संभव हो सके तथा कुछ चरों में जोड़ तोड़ करना आसान हो सके। ऐसी परिस्थिति को एक कृत्रिम परिस्थिति कहना उचित न होगा। इसे प्रयोग शोध लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च अंडर ब्रैकेट क्लोज की एक खास विशेषता कहना उचित होगा, न कि इस तरह के शोध की एक परिसीमा लिमिटेशन कहना। इस पर टिप्पणी करते हुए कर्लिंगर 1986 ने कहा है अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा, कृत्रिमता की आलोचना प्रयोगकर्ताओं जो यह जानते हैं कि प्रयोगात्मक परिस्थिति कृत्रिम है द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि यह वैसे व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो प्रयोगशाला प्रयोग के उद्देश्य से अवगत नहीं होते हैं। 3, चूंकि प्रयोगशाला प्रयोग शोध में प्रायः कई स्वतंत्र चरों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में एक साथ जोड़ तोड़ किया जाता है, इसलिए इस ढंग के प्रयोगात्मक जोड़ तोड़ एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन का प्रभाव प्रायः दुर्बल एवं अस्पष्ट होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयोगशाला प्रयोग शोध में स्वतंत्र चरों में पर्याप्त शक्ति एडिक्वेट स्ट्रेंथ की कमी पाई जाती है। पैराग्राफ चेंज 4, रॉबिन्सन 1976 के अनुसार प्रयोगशाला प्रयोग शोध द्वारा कुछ विशेष परिस्थिति जैसे विशाल दंगा, मेजर रायट, भूकंप आदि में व्यक्तियों के व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस ढंग की परिस्थिति प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। पैराग्राफ चेंज 5, सामाजिक अनुमति सोशल अप्रूवल न होने के कारण भी कुछ खास परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन प्रयोगशाला प्रयोग शोध द्वारा नहीं किया जा सकता है, जैसे समाज इसकी अनुमति नहीं देता कि किसी मानव शिशु को जन्म से ही एक वंचित वातावरण डिप्राइव्ड एनवायरमेंट ब्रैकेट क्लोज में रखकर पाला पोषा जाए और फिर शिशु पर वैसे वातावरण के पड़ने वाले प्रभावों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। फलस्वरूप प्रयोगशाला प्रयोग शोध का कार्य क्षेत्र स्कोप कुछ सीमित हो जाता है। पैराग्राफ चेंज 6, रॉबिन्सन 1976 के अनुसार ही प्रयोगशाला प्रयोग शोध चूंकि एक खर्चीला कॉस्टली ब्रैकेट क्लोज तथा अधिक समय लेने वाला शोध है, इसलिए भी इसका प्रयोग शोधकर्ताओं या प्रयोगकर्ताओं द्वारा अधिक नहीं किया जाता है। कुछ प्रयोग तो ऐसे हैं जिनका उपकरण एपरेटस इतना अधिक कीमती है कि उसे खरीदकर प्रयोग करना एक सामान्य प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता के बस की बात नहीं है। पैराग्राफ चेंज, इन आलोचनाओं के बावजूद भी प्रयोगशाला प्रयोग शोध लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च ब्रैकेट क्लोज मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षणिक शोध के विभिन्न प्रकारों में प्राथमिक प्राइमरी माना जाता है। आज भी जिन मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षित सिद्धांतों एवं नियमों को प्रयोगात्मक समर्थन नहीं प्राप्त है उस पर अधिक भरोसा नहीं किया जाता है। ब, क्षेत्र प्रयोग शोध फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च मनोवैज्ञानिकों विशेषकर समाज मनोवैज्ञानिकों सोशल साइकोलॉजिस्ट शिक्षा मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों सोशियोलॉजिस्ट द्वारा क्षेत्र प्रयोग शोध का प्रयोग अधिक किया जाता है। क्षेत्र प्रयोग शोध एक ऐसा शोध है जिसमें प्रयोगकर्ता एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन एक ऐसी क्षेत्र परिस्थिति फील्ड सिचुएशन या वास्तविक परिस्थिति में करता है जिसमें बहिरंग चरों एक्सट्रानियस वेरिएबल का अधिकतम नियंत्रण मैक्सिमम कंट्रोल होता है। उदाहरणार्थ यदि कोई प्रयोगकर्ता यह अध्ययन करना चाहता है कि कक्षा क्लासरूम में बच्चे एक दूसरे के प्रति किस तरह से आक्रामक व्यवहार अग्रेसिव बिहेवियर दिखलाते हैं और ऐसे व्यवहार की बारंबारता फ्रिक्वेंसी किस तरह के बच्चों के प्रति अधिक होती है, तो यह एक क्षेत्र प्रयोग शोध फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च का उदाहरण होगा, बशर्ते कि यह अध्ययन एक ऐसी परिस्थिति में किया गया हो जहां सभी बहिरंग चर एक्सट्रानियस वेरिएबल्स अधिक से अधिक नियंत्रित हों तथा स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन सफलतापूर्वक किया गया हो। कर्लिंगर 1986 ने क्षेत्र प्रयोग शोध को परिभाषित करते हुए कहा है, क्षेत्र प्रयोग एक ऐसा शोध अध्ययन है जो वास्तविक परिस्थिति में किया जाता है तथा जिसमें एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ उतना सावधानीपूर्वक नियंत्रित अवस्था में किया जाता है जितना कि परिस्थिति अनुमति देती है। पैराग्राफ चेंज रॉबिन्सन 1976 के अनुसार अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्षेत्र प्रयोग को क्षेत्र में किया गया एक ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कुछ स्वतंत्र चरों में सीधा जोड़ तोड़ किया जाता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज पैराग्राफ चेंज। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें क्षेत्र प्रयोग शोध फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च की निम्नांकित विशेषताओं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है। पैराग्राफ चेंज एक क्षेत्र प्रयोग शोध एक क्षेत्र में अर्थात एक वास्तविक परिस्थिति रियलिस्टिक सिचुएशन ब्रैकेट क्लोज में किया जाता है। स्कूल दफ्तर फैक्ट्री कोर्ट आदि वास्तविक परिस्थिति के कुछ उदाहरण हैं जिनमें क्षेत्र प्रयोग शोध अक्सर किया जाता है। पैराग्राफ चेंज दो क्षेत्र प्रयोग शोध फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च में स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन किया जाता है। तीन क्षेत्र प्रयोग शोध में स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन एक ऐसी अवस्था कंडीशन में किया जाता है जो उस सीमा तक नियंत्रित होती है जिस सीमा तक उस विशेष क्षेत्र या परिस्थिति में नियंत्रण संभव है। पैराग्राफ चेंज क्षेत्र प्रयोग के कुछ लाभ एडवांटेजेस ब्रैकेट क्लोज तथा परिसीमाएं लिमिटेशंस ब्रैकेट क्लोज हैं। इसके प्रमुख लाभ एडवांटेजेस निम्नांकित हैं एक क्षेत्र प्रयोग शोध एक वास्तविक परिस्थिति रियलिस्टिक सिचुएशन में किया जाता है अतः इस ढंग का शोध समाज मनोवैज्ञानिकों समाजशास्त्रियों शिक्षा मनोवैज्ञानिकों एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट तथा नैदानिक मनोवैज्ञानिकों क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिनकी शोध समस्याएं रिसर्च प्रॉब्लम वास्तविक परिस्थिति में अध्ययन किए जाने के अनुकूल होती है के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। पैराग्राफ चेंज दो क्षेत्र प्रयोग शोध के चरों वेरिएबल्स का प्रभाव अधिक तीक्ष्ण होता है। शोध का मूल नियम यह है कि परिस्थिति जितनी ही वास्तविक होती है अध्ययन किए जाने वाले चरों का प्रभाव उतना ही अधिक तीक्ष्ण एवं स्पष्ट होता है। इस नियम का पूर्ण समर्थन एवं संतुष्टि क्षेत्र प्रयोग शोध में होता है। तीन क्षेत्र प्रयोग शोध में बाह्य वैधता का लाभ होता है। दूसरे शब्दों में क्षेत्र प्रयोग शोध से प्राप्त निष्कर्षों को आसानी से उन सभी प्राणियों या जीवों ऑर्गेनिज्म के लिए सामान्यीकरण जनरलाइजेशन कर देते हैं जिनके सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में अध्ययन में शामिल किया गया था। जैसे किसी फैक्ट्री में कर्मचारियों का अध्ययन कर यदि क्षेत्र प्रयोगकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कर्मचारियों में अन्यत्रवासिता एब्सेंटिज्म का मूल कारण कम वेतन है तो वह इस निष्कर्ष को अन्य सभी तरह की फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों पर विश्वास के साथ लागू कर सकता है क्योंकि अध्ययन वास्तविक परिस्थिति में की गई थी। अगर इस ढंग का निष्कर्ष किसी कृत्रिम परिस्थिति में अध्ययन कर पहुंचा गया होता तो उसे कहां तक सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाना संभव होता कहना मुश्किल था। पैराग्राफ चेंज इन लाभों के बावजूद भी क्षेत्र प्रयोग शोध की कुछ परिसीमाएं हैं जो निम्नांकित हैं एक चूँकि क्षेत्र प्रयोग शोध फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च एक वास्तविक परिस्थिति रियलिस्टिक सिचुएशन में किया जाता है अतः परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण प्रयोगकर्ता का नहीं रह जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रयोग के आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ बहिरंग चरों एक्सट्रानियस वेरिएबल्स जैसे अवांछित आवाज़ या शोरगुल आदि द्वारा प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में प्रयोगकर्ता के लिए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता है और जिस निष्कर्ष पर यदि वह पहुंच भी जाता है वह भरोसेमंद नहीं हो पाता है। इन्हीं कारणों से ऐसा कहा जाता है कि क्षेत्र प्रयोग शोध में आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी काफ़ी कम होती है। दो कुछ विशेष कारणों से कभी कभी क्षेत्र प्रयोग शोध में स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ तथा प्रयोज्य सब्जेक्ट्स का यादृच्छिकरण रैंडम माइजेशन करना कठिन हो जाता है। उदाहरण स्वरूप स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन तथा प्रयोज्यों का यादृच्छिककरण उस समय दुर्लभ हो सकता है जब बच्चे यदि प्रयोग बच्चों के समूह पर किया जा रहा हो ब्रैकेट क्लोज को माता पिता द्वारा ऐसी प्रयोगात्मक अवस्था में काम करने से रोका जा रहा हो जो बच्चों के मानसिक संतुलन पर बुरा असर डाल सकते हैं, जैसे यदि प्रयोग ऐसा है जिसमें बच्चों के समस्या समाधान क्षमता पर कुंठा फ्रस्ट्रेशन के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाना है और एक समूह को ऐसी अवस्था में रखा जाना है जहां उसमें तीव्र कुंठा उत्पन्न किया जाएगा, तो ऐसा संभव है कि माता पिता अपने अपने बच्चों की ऐसी परिस्थिति में काम करने की अनुमति न दें और तब ऐसी अवस्था में स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन तथा प्रयोज्यों का यादृच्छिककरण रैंडमाइजेशन किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। 3. क्षेत्र प्रयोग शोध में परिशुद्धता प्रिसिजन की कमी होती है। परिशुद्धता की कमी का मूल कारण यह होता है कि इस तरह के शोध में बहुत तरह के पर्यावरणीय कारक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अनियंत्रित रह जाते हैं जो आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रभावित कर परिणाम को दूषित कर देते हैं। पैराग्राफ चेंज। इन आलोचनाओं के बावजूद क्षेत्र प्रयोग शोध फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च का उपयोग जटिल सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं प्रोसेसेस प्रभावों इन्फ्लुएंसेस तथा परिवर्तनों चेंजेस के अध्ययन में काफ़ी किया जाता है क्योंकि ऐसी समस्याओं का अध्ययन प्रयोगशाला प्रयोग शोध लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च द्वारा करने में काफ़ी कठिनाइयां होती हैं। प्रयोगशाला प्रयोग शोध तथा क्षेत्र प्रयोग शोध का एक तुलनात्मक अध्ययन अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च प्रयोगशाला प्रयोग शोध लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च तथा क्षेत्र प्रयोग शोध फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च दोनों ही प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हैं। इस स्पष्ट समानता अपेरेंट सिमिलैरिटी के अलावा भी इन दोनों में कुछ विशिष्ट समानताएं हैं जो इस प्रकार हैं। पैराग्राफ चेंज। 1. दोनों की तरह की शोधों में स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन किया जाता है। 2. दोनों ही तरह के शोधों में बहिरंग चर एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को नियंत्रित किया जाता है। 3. दोनों तरह के शोधों में आईवी तथा डीवी में कारण परिणाम संबंध कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करने का भरसक प्रयत्न किया जाता है। इन समानताओं सिमिलैरिटीज के बावजूद इन दोनों तरह के शोध में कुछ अंतर है जो निम्नांकित है। 1. प्रयोगशाला प्रयोग शोध लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च किसी प्रयोगशाला की परिस्थिति में की जाती है जो जिंदगी की वास्तविक परिस्थिति रियलिस्टिक सिचुएशन के अनुरूप हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, परंतु क्षेत्र प्रयोग शोध हमेशा एक वास्तविक परिस्थिति में ही किया जाता है। पैराग्राफ चेंज। 2. प्रयोगशाला प्रयोग शोध में आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी अधिक होती है तथा बाह्य वैधता एक्सटर्नल वैलिडिटी कम होती है, परंतु क्षेत्र प्रयोग शोध में ठीक इसके विपरीत बाह्य वैधता एक्सटर्नल वैलिडिटी की मात्रा आंतरिक वैधता की मात्रा से अधिक होती है। 3. प्रयोगशाला प्रयोग शोध में स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन तथा प्रयोज्यों सब्जेक्ट्स का यादृच्छिकरण रैंडमाइजेशन पूर्ण रूपेण संभव है, परंतु क्षेत्र प्रयोग शोध फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च में प्रयोगकर्ता द्वारा ये दोनों कार्य एक सीमा तक अर्थात जहाँ तक क्षेत्र फील्ड की वास्तविक परिस्थिति में संभव हो सकता है किए जाते हैं। इन दोनों कार्यों में प्रयोगशाला प्रयोग शोध के समान क्षेत्र प्रयोग शोध में पूर्णता परफेक्टनेस नहीं आ सकती है। 4. प्रयोगशाला की परिस्थिति नियंत्रित होने के कारण प्रयोगशाला प्रयोग शोध में परिशुद्धता एक्यूरेसी अधिक होती है, परंतु क्षेत्र प्रयोग शोध में वास्तविक परिस्थिति होने के कारण ऐसी परिशुद्धता की मात्रा काफ़ी कम होती है। स्पष्ट हुआ कि प्रयोगशाला प्रयोग शोध तथा क्षेत्र प्रयोग शोध दोनों ही प्रयोगात्मक शोध होने के बावजूद भी एक दूसरे से कई अर्थों में भिन्न हैं। पैराग्राफ चेंज। प्रयोग के प्रकार टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च तथा शैक्षिक शोध एजुकेशनल रिसर्च में प्रयोग के कई प्रकार बतलाए गए हैं। इन प्रकारों टाइप्स का वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अ प्रयोगकर्ता की शोध के उद्देश्य पर्पस के आधार पर प्रयोग को निम्नांकित दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। एक समन्वेशी प्रयोग बनाम पुष्टि प्रयोग, एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट वर्सेस कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट ब्रैकेट क्लोज। अगर शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी है जिसके बारे में अधिक संगत सूचनाएं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी अवस्था में शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता एक समन्वेशी प्रयोग एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि समन्वेशी प्रयोग किसी शोध समस्या के अध्ययन की आरंभिक अवस्था में किया जाता है। समन्वेशी प्रयोग में स्वतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल तथा आश्रित चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच किसी प्रकार के संबंध होने की पूर्व कल्पना नहीं की जाती है, बल्कि इस तरह के प्रयोग का मात्र उद्देश्य यह अन्वेषण एक्सप्लोरेशन करना होता है कि स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अमुक परिवर्तन का प्रभाव आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या होगा। प्रयोगकर्ता यहाँ इन दोनों चरों के संबंध के बारे में पहले से किसी प्रकार की प्राकल्पना हाइपोथेसिस नहीं बना पाता है। उदाहरणार्थ जब प्रयोगकर्ता अस्पष्ट चित्रों एम्बिग्यूस फिगर्स के प्रत्यक्षण पर भूख हंगर के प्रभाव का अन्वेषण करने के लिए प्रयोग करता है, तब यह समन्वेशीय प्रयोग का उदाहरण होगा। यहाँ प्रयोज्य सब्जेक्ट को कुछ समय तक भूखा रखा जाएगा और उन अस्पष्ट चित्रों में कुछ भी प्रयोज्य देख पाता है, उसे बतलाने को कहा जाएगा। अगर प्रयोज्य अपने उत्तर में अधिकांशतः खाने पीने की चीज़ें ऑब्जेक्ट्स का प्रत्यक्षण करता है, तो प्रयोगकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि प्रत्यक्षण की प्रक्रिया भूख की आवश्यकता से प्रभावित होती है। पैराग्राफ चेंज। पुष्टि प्रयोग कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट वैसे प्रयोग को कहा जाता है जिसमें शोध समस्या के बारे में प्रयोगकर्ता को अधिक से अधिक सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं और परिणाम स्वरूप वह पहले से ही स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल के संबंध के बारे में एक प्राकल्पना हाइपोथेसिस बना लेता है। प्रयोग का मात्र उद्देश्य यह देखना होता है कि प्रयोग के परिणाम द्वारा प्राकल्पना की पुष्टि कन्फर्मेशन होती है या नहीं। इस तरह पुष्टि प्रयोग कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट में प्रयोग के परिणाम के आधार पर एक प्राकल्पना हाइपोथेसिस की जांच की जाती है, जबकि समन्वेशी प्रयोग एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट में प्रयोग शोध के परिणाम के आधार पर एक नई प्राकल्पना का मात्र सृजन होता है। जैसे उपयुक्त उदाहरण में समन्वेशी प्रयोग के परिणाम के आधार पर एक नई प्राकल्पना इस प्रकार हो सकती है, अंडर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, भूख की आवश्यकता द्वारा प्रत्यक्षण प्रभावित होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, हंगर नीड्स अफेक्ट्स परसेप्शन ब्रैकेट क्लोज। पुष्टि प्रयोग कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट का एक उदाहरण इस प्रकार है। विस्मरण फॉरगेटिंग के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों की समीक्षा करके यदि प्रयोगकर्ता यह प्राकल्पना तैयार करता है कि अविराम विधि मेस्ड मेथड की तुलना में विराम विधि डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड से सीखे गए निरर्थक पदों नॉनसेंस सिलेबलेस को सिलेबलेस को व्यक्ति जल्दी नहीं भूलता है और वह इस प्राकल्पना की जांच के लिए प्रयोग करता है, तो ऐसा प्रयोग पुष्टि प्रयोग का उदाहरण होता है। यदि प्रयोग के परिणाम द्वारा प्राकल्पना की संपुष्टि कन्फर्मेशन हो जाती है तो प्राकल्पना को सत्य मान लिया जाता है, परंतु यदि ऐसा नहीं होता है तो वैसी अवस्था में प्राकल्पना में परिमार्जन मॉडिफिकेशन लाया जाता है और तब यह नया प्रयोग करके उसकी सत्यता की जांच की जाती है। पैराग्राफ चेंज। प्रयोग चाहे समन्वेशी एक्सप्लोरेटरी हो या पुष्टि कन्फर्मेटरी, इसमें विशेष डिज़ाइन का उपयोग होता है जिसकी चर्चा अध्याय 7 में की जाएगी। पैराग्राफ चेंज। 2 निर्णायक प्रयोग तथा अग्रगामी प्रयोग। क्रूशियल एक्सपेरिमेंट एंड पायलट एक्सपेरिमेंट ब्रैकेट क्लोज, जब प्रयोगकर्ता का उद्देश्य एक साथ ही सभी तरह के संभावित प्रकल्पनाओं पॉसिबल हाइपोथेसिस की जांच करना होता है, तो ऐसी अवस्था में वह जिस प्रयोग का संचालन करता है उसे निर्णायक प्रयोग क्रूशियल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से एक निर्णायक प्रयोग वैसे प्रयोग को कहा जाता है जिसके परिणाम रिजल्ट द्वारा किसी एक प्राकल्पना की पुष्टि कंफर्म हो जाती है, परंतु सभी वैकल्पिक प्राकल्पनाओं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अस्वीकृत रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। मैक ग्यूगन 1990 के शब्दों में अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा, आदर्शतः एक निर्णायक प्रयोग वह है जिसका परिणाम एक प्राकल्पना का समर्थन करता है और सभी संभावित वैकल्पिक को संतुष्टि नहीं करता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। स्पष्टतः किसी भी प्रयोग का उद्देश्य यही होना चाहिए कि अपने क्षेत्र का वह एक निर्णायक प्रयोग क्रूशियल एक्सपेरिमेंट का उदाहरण बन सके, परंतु सच्चाई यह है कि किसी भी शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वह किसी भी शोध समस्या से संबंधित सभी तरह के वैकल्पिक अल्टरनेटिव प्रकल्पनाओं का निश्चित रूप से उल्लेख कर सके। अतः वास्तविक अर्थ में एक निर्णायक प्रयोग क्रूशियल एक्सपेरिमेंट का संचालन संतोषजनक ढंग से संभव नहीं है। इसलिए निर्णायक प्रयोग का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च में मात्र एक ऐसे आदर्श आइडल के रूप में होता है जिसकी प्राप्ति की ओर शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। पैराग्राफ चेंज, अग्रगामी प्रयोग पायलट एक्सपेरिमेंट या अग्रगामी अध्ययन पायलट स्टडी, वैसे प्रयोग को कहा जाता है जो किसी मुख्य प्रयोग मेजर एक्सपेरिमेंट के पहले कुछ ही प्रयोज्यों को लेकर किया जाता है। अतः यह मुख्य प्रयोगों का एक ड्रेस रिहर्सल ब्रैकेट क्लोज के समान होता है। अग्रगामी प्रयोग का मुख्य उद्देश्य अध्ययन किए जाने वाले चरों के जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन, प्रयोज्यों का यादृच्छिकरण रैंडमाइजेशन, शोध डिजाइन की वैधता वैलिडिटी, उत्तम विधि द्वारा प्रयोग के संचालन में होने वाली कठिनाइयों आदि से अवगत कराना होता है। अग्रगामी प्रयोग से प्रयोगकर्ता को यह पता चलता है कि वास्तविक प्रयोग यानी मुख्य प्रयोग जिसे वह भविष्य में करने वाला है के संचालन में उत्तम विधि तथा उत्तम डिजाइन कौन हो सकता है तथा किन किन तरह की कठिनाइयों का सामना उसे करना होगा। वह प्रयोज्यों सब्जेक्ट्स की संख्या के आधार पर प्रयोग को निम्नांकित दो भागों में बांटा गया है, एक व्यक्तिगत प्रयोग इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इस प्रयोग में प्रयोज्य की संख्या एक ही होती है। ऐसे प्रयोज्यों की विशेषता यह होती है कि जैविक चरों ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स जैसे आयु यौन बुद्धि तथा प्रेरणा मोटिवेशन आदि जो एक प्रकार के स्वतंत्र चर हैं और जो बहिरंग चर एक्सट्रानियस वेरिएबल्स के रूप में भी अक्सर कार्य करते हैं को अलग से नियंत्रित नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एक प्रयोज्य के रहने से वे अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। ऐसे चरों को जैविक चर ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि वे जीव के एक हिस्सा होते हैं और प्रयोग के पहले से ही जीव व्यक्ति या पशु ब्रैकेट क्लोज में विभिन्न मात्रा में मौजूद रहते हैं। पैराग्राफ चेंज, दो सामूहिक प्रयोग ग्रुप एक्सपेरिमेंट, ऐसे प्रयोग में प्रयोज्य की संख्या एक से अधिक होती है तथा प्रयोज्यों के एक या एक से अधिक समूह को हो सकते हैं। जब स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोज्य के एक ही समूह का उपयोग किया जाता है तो ऐसे प्रयोग के डिज़ाइन को एकल सामूहिक समूह सिंगल ग्रुप और विदिन ग्रुप डिज़ाइन कहा जाता है तथा इस प्रयोग के डिज़ाइन को एकल समूह डिज़ाइन सिंगल ग्रुप डिज़ाइन कहा जाता है। परंतु जब स्वतंत्र चर की विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोज्यों के अलग अलग समूह कार्य करते हैं तो उन्हें पृथक सामूहिक प्रयोग सेपरेट ग्रुप और बिटवीन सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है तथा उस प्रयोग की डिज़ाइन को पृथक सामूहिक डिज़ाइन सेपरेट विग्रुप डिज़ाइन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज, इस तरह से स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिक शोध में प्रयोग के कई प्रकार होते हैं। इन प्रयोग प्रकारों में तुलनात्मक रूप से समूह प्रयोग तथा पुष्टि प्रयोग कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट की अधिकता देखी गई है। पैराग्राफ चेंज, एक प्रयोगात्मक शोध की रूपरेखा आउटलाइन फॉर एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। पैराग्राफ चेंज, प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंट रिसर्च काफ़ी क्रमबद्ध सिस्टमेटिक होता है। प्रयोग एक्सपेरिमेंट का प्रकार चाहे कोई भी क्यों न हो, इसे करने में कुछ निहित सोपान स्टेप्स होते हैं जिन्हें एक क्रम सीक्वेंस में अनुसरण फॉलो करना होता है। अतः यह आवश्यक है कि विद्यार्थी उन सोपानों स्टेप्स एवं उसके क्रम सीक्वेंस से भली भांति अवगत हो। उन सोपानों एवं उनके क्रम सीक्वेंस की व्याख्या अग्रकांकित है। पैराग्राफ चेंज, एक प्रयोग का शीर्षक टाइटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। प्रयोग का शीर्षक स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए। शीर्षक का उल्लेख करते समय प्रयोगकर्ता को दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात यह है कि शीर्षक में किसी आडंबरी शब्दों का उपयोग न हो तथा दूसरी बात यह है कि शीर्षक बहुत लंबा न होकर छोटा, सुसंबद्ध, कॉम्पैक्ट तथा अध्ययन किए जाने वाले क्षेत्र से सीधे संबंधित हो। इसके साथ ही साथ प्रयोग का स्थान लोकेशन अर्थात प्रयोग कहाँ होगा तथा समय अर्थात कब होगा का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि इससे न प्रयोगकर्ता को और न ही प्रयोज्य सब्जेक्ट्स को किसी तरह की संभ्रांति कन्फ्यूजन हो सके। पैराग्राफ चेंज, दो साहित्यिक का सर्वे, सर्वे ऑफ द लिटरेचर। प्रयोग से संबंधित पहले जो शोध किए जा चुके हैं उसका सर्वे या समीक्षा करना प्रयोगकर्ता के लिए अति आवश्यक होता है। प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए संबंधित शोधों रिसर्चर्स एवं प्रयोगों की समीक्षा कई कारणों से महत्वपूर्ण बतलाई गई है, जिसमें तीन कारण प्रमुख हैं। पहला, इस ढंग की समीक्षा रिव्यू से प्रयोगकर्ता को शोध समस्या का सही सही प्रतिपादन फॉर्मुलेशन करने में मदद मिलती है। प्रायः प्रयोगकर्ता के मन में शोध की समस्या के बारे में कुछ अस्पष्ट धारणाएं बनी होती हैं जो इस ढंग की समीक्षा के फलस्वरूप स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरा, ऐसी समीक्षा से यह भी पता चल जाता है कि क्या सचमुच में इस प्रयोग को करने की ज़रूरत है या नहीं। यदि पहले ही मनोवैज्ञानिक इस प्रयोग को कर चुके हैं तो फिर उसी प्रयोग को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब प्रयोग पहले दिए गए प्रयोग के परिणाम की संपुष्टि कन्फर्मेशन के लिए किया जा रहा है तब तो उसे दोहराया जा सकता है। तीसरा, वर्तमान प्रयोग से संबंधित पहले किए गए प्रयोगों की समीक्षा करने से यह भी पता चलता है कि कौन कौन बहिरंग चर एक्सट्रानियस वेरिएबल्स हैं तथा उन संभव को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। सौभाग्यवश मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाले शोधों से संबंधित पूर्ण अध्ययनों की समीक्षा साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट के कारण काफ़ी आसान हो पाया है। पैराग्राफ चेंज, तीन, समस्या को निश्चित करना स्टेट द प्रॉब्लम। प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी चीज़ के बारे में प्रयोगकर्ता कुछ जानना चाहता है और उन्हें उस चीज़ के बारे में उपयुक्त ज्ञान की कमी है। समस्या प्रॉब्लम का उल्लेख इस तरह के प्रश्नात्मक वाक्य में होना चाहिए जिससे यह स्पष्ट पता चल सके कि प्रयोगकर्ता में संबंधित ज्ञान की कमी है। जैसे, क्या थकान से कार्य क्षमता में कमी होती है, क्या कर्मचारियों में अनुपस्थिति एब्सेंटिज्म वित्तीय प्रेरणा फाइनेंशियल इंसेंटिव की कमी द्वारा होती है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे शोध समस्या का उल्लेख किस प्रकार करना चाहिए का अंदाज मिलता है। अतः शोध समस्या का उल्लेख इस ढंग से किया जाना चाहिए कि उसका उत्तर हाँ या नहीं में प्रयोग के बाद किया जा सके। यदि ऐसा संभव नहीं है तो सामान्य रूप से यही कहा जाता है कि प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज, चार, प्राकल्पना तैयार करना, स्टेट द हाइपोथेसिस। समस्या जब उल्लेख किया जाता है तब उसमें चर वेरिएबल भी सम्मिलित हो जाते हैं और उन चरों के आधार पर शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम का एक अंतरिम समाधान टेंटेटिव सॉल्यूशन की अभिव्यक्ति की जाती है। इस अंतरिम समाधान को प्राकल्पना हाइपोथेसिस कहा जाता है। जैसे उपयुक्त शोध समस्या को ध्यान में रखते हुए यह प्राकल्पना विकसित की जा सकती है। अंडर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, थकान से कार्य क्षमता में गिरावट आती है। 5. चरों को परिभाषित करना, डिफाइन द वेरिएबल। शोध समस्या तथा प्राकल्पना हाइपोथेसिस में स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल का उल्लेख होता है। प्रयोगकर्ता को इस चरण स्टेप में उन चरों की संक्रियात्मक रूप से ऑपरेशनली परिभाषित करना आवश्यक हो जाता है ताकि उनका अर्थ बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाए। इस चरण स्टेप का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अगर स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल को संक्रियात्मक रूप से परिभाषित नहीं किया जा गया तो प्राकल्पना अजांचनीय अनस्टेबल रह जाएगी। 6. उपकरण एपरेटस, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में विभिन्न तरह के उपकरणों की जरूरत पड़ती है। उन उपकरणों द्वारा स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ करने में तथा आश्रित चर के मान में उत्पन्न परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने में सुविधा होती है। स्मृति पट, मेमोरी ड्रम ब्रैकेट क्लोज्ड, मूलर लॉयर भ्रम बोर्ड, मूलर लॉयर इल्यूजन बोर्ड, स्पर्शानुभावक एस्थेसियोमीटर, श्वसन लेखी न्यूमोग्राफ, काइमोग्राफ, टेची स्टोकोप, स्टॉपवॉच आदि शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में होने वाले कुछ प्रमुख उपकरण हैं। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में उपकरणों द्वारा दो कार्य फंक्शंस किए जाते हैं। पैराग्राफ चेंज 1. उपकरण के माध्यम से प्रयोगात्मक विवेचन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट करने में मदद मिलती है तथा 2. प्रयोगात्मक विवेचन से प्रयोज्यों के व्यवहारों में उत्पन्न अंतरों को रिकॉर्ड करने में मदद मिलती है। पैराग्राफ चेंज इन दोनों कार्यों के संपन्न हो जाने पर प्रयोग में परिशुद्धता एक्यूरेसी बढ़ जाती है, परंतु कभी कभी देखा गया है उपकरण सही नहीं होते हैं या काफ़ी पुराना या ठीक ढंग से आशंकित कैलिब्रेटेड नहीं होते हैं। ऐसे उपकरणों का प्रयोग निश्चित रूप से नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा प्रयोग की परिशुद्धता जाती रहेगी। पैराग्राफ चेंज 7. चरों का नियंत्रण करना, कंट्रोल द वेरिएबल। प्रयोग के इस चरण स्टेप में प्रयोगकर्ता इन सभी चरों का पता लगाता है तथा नियंत्रित करने की कोशिश करता है जो आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे चरों को बहिरंग चर एक्सट्रानियस वेरिएबल्स कहा जाता है। बहिरंग चरों को नियंत्रित करने के कई तरीके हैं जिसका वर्णन अध्याय 7 में किया जाएगा। संक्षेप में यहाँ यही कहा जा सकता है कि प्रयोगकर्ता को यह सावधानीपूर्वक देख लेना चाहिए कि कोई भी बहिरंग चर एक्सट्रानियस वेरिएबल प्रयोज्यों के विभिन्न समूहों डिफरेंट ग्रुप को आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल पर विभिन्न भिन्न ढंग से प्रभावित नहीं करे। अगर किसी बहिरंग चर का प्रभाव सभी समूहों पर समान ढंग से पड़ता है तो उसका प्रभाव अपने आप ही स्वतंत्र होता समझा जाता है तथा इसे एक आदर्श अवस्था आइडियल कंडीशन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज 8. डिज़ाइन का चयन करना, सेलेक्ट डिज़ाइन। प्रयोग के इस चरण में प्रयोगकर्ता को अपने प्रयोग के लिए एक डिज़ाइन का चयन करना होता है। डिज़ाइन से तात्पर्य अध्ययन की एक ऐसी योजना प्लानिंग से होती है जिसके द्वारा शोध समस्या का उत्तर ढूंढा जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में अनेकों तरह के डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है जिनमें द्विसमूह डिज़ाइन, टू ग्रुप्स डिज़ाइन, बहु समूह डिज़ाइन, मल्टी ग्रुप्स डिज़ाइन तथा क्रमगुणित डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन अन्य डिज़ाइनों की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। अंडर ब्रैकेट डिज़ाइन के विभिन्न प्रकार की व्याख्या अध्याय 7 में की गई है। ब्रैकेट क्लोज, प्रयोगकर्ता को इन विभिन्न डिजाइन में से सबसे उपयुक्त डिजाइन का चयन अपने शोध समस्या तथा प्राकल्पना हाइपोथीसिस को ध्यान में रखकर करना होता है। डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें बहिरंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का नियंत्रण अधिकतम हो, प्रयोगात्मक प्रसरण एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस का सृजन अधिक से अधिक हो तथा त्रुटि प्रसरण एरर वेरिएंस की उत्पत्ति कम से कम हो। 9. प्रयोज्यों का चयन करना तथा उन्हें समूहों में आवंटित करना, सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स एंड असाइनिंग थीम टू ग्रुप्स। प्रयोगकर्ता अपने प्रयोग में सम्मिलित करने के लिए कुछ व्यक्ति का चयन सिलेक्शन करता है, जिसे प्रतिदर्श सैंपल कहा जाता है। प्रतिदर्श का चयन एक जीव संख्या पॉपुलेशन और यूनिवर्स से यादृच्छिक रूप से रैंडमली किया जाता है, ताकि उस प्रतिदर्श की जीव संख्या का प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव माना जा सके। प्रतिदर्श का यादृच्छिक चयन रैंडम सिलेक्शन वैसे चयन को कहा जाता है जिसमें जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श में शामिल किए जाने की संभावना बराबर बराबर होती है तथा किसी भी एक सदस्य का चयन किया जाना दूसरे सदस्य पर निर्भर नहीं करता है। पैराग्राफ चेंज। प्रतिदर्श सैंपल का चयन कर लेने के बाद तथा डिजाइन के प्रकार को निश्चित कर लेने के बाद प्रयोगकर्ता प्रतिदर्श को विभिन्न समूहों ग्रुप्स में यादृच्छिकरण रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा आवंटित असाइन करता है। उदाहरण स्वरूप, मान लिया जाए कि प्रयोगकर्ता ने 40 प्रयोज्यों सब्जेक्ट्स का एक प्रतिदर्श सैंपल चुना है जिसे वह 2 समूहों में यादृच्छिक ढंग से रैंडमली आवंटित करना चाहता है। इस प्रक्रिया को वह सिक्का उछाल क्वाइन फ्लिपिंग कर संपन्न कर सकता है। जैसे वह यह निर्णय कर सकता है कि यदि सिक्का उछालने पर चित हेड आएगा तो प्रयोज्य संख्या 1 को समूह अ में रखा जाएगा, परंतु यदि पट टेल आएगा तो उस प्रयोज्य को समूह ब में रखा जाएगा। इसी प्रकार को फिर अन्य सभी प्रयोज्यों पर तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि वे समूह अ में प्रयोज्यों की संख्या 20 न हो जाए। इस तरह से यादृच्छिक आवंटन रैंडम असाइनमेंट की प्रक्रिया द्वारा प्रयोज्य को 2 समूह में बांट दिया जाएगा। डिजाइन के अनुसार प्रयोज्यों को निर्धारित समूहों जैसे 3 समूह, 4 समूह आदि में इसी तरह से आवंटित कर दिया जाता है। समूह अ तथा समूह ब के तैयार हो जाने पर प्रयोगकर्ता को यह निर्णय करना होता है कि इसमें के से कौन समूह नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप की भूमिका निभाएगा तथा कौन समूह प्रयोगात्मक समूह एक्सपेरिमेंट ग्रुप की भूमिका में रहेगा। इसका निर्णय भी वह सिक्का उछाल कर अर्थात यादृच्छिक रूप से कर लेता है। चित आने पर समूह अ को प्रयोगात्मक समूह की भूमिका में या पट टेल आने पर समूह ब को प्रयोगात्मक समूह की भूमिका, जैसा प्रयोगकर्ता सिक्का उछालने के पहले निर्णय कर चुका होता है, ब्रैकेट क्लोज्ड में रखा जाता है। पैराग्राफ चेंज। किसी भी प्रयोग में प्रयोज्यों के कितने समूह होंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रयोग में स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी है, प्रत्येक चर में कितने स्तर लेवल हैं तथा बहिरंग चरों एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का स्वरूप क्या है। अगर किसी प्रयोग में एक ही स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके 2 स्तर लेवल हैं तो इसमें समूहों की संख्या मात्र 2 होगी, एक प्रयोगात्मक समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तथा दूसरा नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप। जैसे अगर पुरस्कार का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर अध्ययन किया जाना है तो हम इसके लिए 2 समूह तैयार कर सकते हैं। एक समूह में पुरस्कार दिया जाएगा प्रयोगात्मक समूह तथा दूसरे में पुरस्कार नहीं दिया जाएगा नियंत्रित समूह। परंतु यदि हम इस स्वतंत्र चर यानी पुरस्कार के 3 स्तर कर देते हैं, जैसे श्रेष्ठ पुरस्कार सुपीरियर रिवॉर्ड, मध्यम पुरस्कार मीडियम रिवॉर्ड तथा निम्न पुरस्कार लोअर रिवॉर्ड, तो इसमें प्रयोज्यों के समूह की संख्या 3 हो जाएगी। इस समूह श्रेष्ठ पुरस्कार की अवस्था के लिए, दूसरा समूह मध्यम पुरस्कार की अवस्था के लिए तथा तीसरा समूह निम्न पुरस्कार की अवस्था के लिए प्राय प्रत्येक समूह में प्रयोज्यों की संख्या बराबर बराबर रखी जाती है। हालांकि यह कोई आवश्यक शर्त नहीं है, परंतु ऐसा होने से सांख्यिकीय विश्लेषण स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कुछ सुविधा होती है। पैराग्राफ चेंज 10, प्रयोगात्मक कार्यविधि का उल्लेख करना, स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। प्रयोग के इस चरण स्टेप में आंकड़ों का संग्रहण डेटा कलेक्शन किया जाता है, अतः प्रयोगकर्ता आंकड़ों के संग्रहण की विस्तृत कार्यविधि डिटेल प्रोसीजर की एक रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें यह स्पष्टत उल्लेखित होता है कि प्रयोज्यों के साथ किस ढंग का विवेचन ट्रीटमेंट किया जाएगा, किस ढंग से उद्दीपनों स्टिमुलाई को प्रयोज्यों के सामने रखा जाएगा तथा प्रयोज्यों द्वारा किए गए अनुक्रियाओं को कैसे निरीक्षण किया जाएगा तथा उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर प्रयोज्य सब्जेक्ट्स मानव ह्यूमंस हैं तो उन्हें दिया जाने वाला निर्देश इंस्ट्रक्शन की रूपरेखा प्रयोगकर्ता द्वारा तैयार कर ली जाती है। प्रयोगकर्ता शोध या प्रयोग के सभी पहलुओं को उनके सामने इस ढंग से उपस्थित करता है कि प्रयोज्यों रुचि प्रयोग में बढ़ जाए। अगर प्रयोग का स्वरूप काफ़ी जटिल कॉम्प्लेक्स है तो प्रयोगकर्ता प्रयोज्यों की एक छोटी संख्या को लेकर अग्रगामी प्रयोग पायलट एक्सपेरिमेंट भी कर लेता है, ताकि उसे इस बात का अंदाज हो जाए कि कहीं मुख्य प्रयोग की कार्यविधि प्रोसीजर में परिवर्तन करने की ज़रूरत है या नहीं। पैराग्राफ चेंज 11, आंकड़ों का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन ऑफ डेटा। प्रयोग के इस चरण में प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों का मूल्यांकन सांख्यिकीय परीक्षण स्टैटिस्टिकल टेस्ट द्वारा किया जाता है। सांख्यिकीय परीक्षण के अभाव में आंकड़ों का मूल्यांकन नहीं हो सकता है और तब परिणाम रिजल्ट्स की विश्वसनीयता रिलायबिलिटी समाप्त हो जाएगी। उदाहरण स्वरूप, मान लिया जाए कि किसी प्रयोग में प्रयोगात्मक समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का माध्य आश्रित चर के माप पर 20.32 है तथा नियंत्रित समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का माध्य आश्रित चर के माप पर 21.32 है। क्या ऐसी अवस्था में यह कहा जा सकता है कि प्रयोगात्मक समूह का माध्य मीन नियंत्रित समूह के माध्य से अधिक है? शायद नहीं, क्योंकि संभव है माध्य का यह अंतर वास्तविक ना होकर मात्र संयोगवश बाय चांस हो गया हो। परंतु यदि इसका मूल्यांकन उपयुक्त सांख्यिकी परीक्षण स्टैटिस्टिकल टेस्ट जैसे टी परीक्षण टी टेस्ट या एफ परीक्षण एफ टेस्ट द्वारा किया जाए तो प्रयोगकर्ता विश्वास के साथ यह कह सकता है कि प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह का माध्य का अंतर वास्तविक है या मात्र संयोगवश है। प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों के मूल्यांकन करने के लिए बहुत सारे सांख्यिकीय परीक्षण स्टैटिस्टिकल टेस्ट उपलब्ध हैं। आंकड़ों के स्वरूप को ध्यान में रखकर इनमें से उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण का चयन कर लिया जाता है। पैराग्राफ चेंज 12, साक्ष्य रिपोर्ट तैयार करना, फॉर्मेशन ऑफ एविडेंस रिपोर्ट। प्रयोग के आंकड़ों का सांख्यिकीय मूल्यांकन स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन कर लेने के बाद एक साक्ष्य रिपोर्ट एविडेंस रिपोर्ट तैयार किया जाता है। साक्ष्य रिपोर्ट वह रिपोर्ट होता है जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि प्राकल्पना में आईवी तथा डीवी में व्यक्त प्रयोगात्मक संबंध एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप सचमुच में सांख्यिकीय मूल्यांकन के बाद पाए गए या नहीं। यदि संबंध पाया गया तो साक्ष्य रिपोर्ट एविडेंस रिपोर्ट को स्वीकारात्मक पॉजिटिव माना जाता है, परंतु यदि संबंध नहीं पाया या उसके विपरीत संबंध पाया गया तो साक्ष्य रिपोर्ट नकारात्मक माना जाता है। उदाहरण स्वरूप, मान लिया जाए कि प्राकल्पना है पुरस्कार अंडरबैकेट आईवी सीखने की प्रक्रिया डीवी को तीव्र करती है। इनकी जांच के लिए मान लिया जाए कि दो समूह लिया गया, एक प्रयोगात्मक समूह जिसे सीखने के लिए पुरस्कार दिया गया तथा दूसरा नियंत्रित समूह जिसे सीखने के लिए पुरस्कार नहीं दिया गया। यदि प्रयोगात्मक समूह द्वारा पाठ को सीखने में लिया गया माध्य समय तथा त्रुटि मीन टाइम एंड एरर नियंत्रित समूह द्वारा सीखने में लिखे गए माध्य समय तथा त्रुटि से कम है, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राकल्पना इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा डिपेंडेंट वेरिएबल में व्यक्त संबंध सही है। अतः यहाँ साक्ष्य रिपोर्ट एविडेंस रिपोर्ट को स्वीकारात्मक माना जाएगा। पैराग्राफ चेंज 13, साक्ष्य रिपोर्ट के आधार पर प्राकल्पना के बारे में अनुमान लगाना, टू मेक इन्फरेंसेस फ्रॉम द एविडेंस रिपोर्ट टू द हाइपोथेसिस ब्रैकेट क्लोज। प्रयोग के इस चरण स्टेप में प्रयोगकर्ता साक्ष्य रिपोर्ट एविडेंस रिपोर्ट के आधार पर प्राकल्पना के बारे में यह अंदाज़ा लगाता है कि वह सत्य है या असत्य है। यदि साक्ष्य रिपोर्ट स्वीकारात्मक पॉजिटिव है तो प्राकल्पना हाइपोथेसिस को सत्य मान लिया जाता है और इसकी संपुष्टि हुई समझी जाती है। परंतु यदि साक्ष्य रिपोर्ट नकारात्मक नेगेटिव है तो प्राकल्पना को असत्य मान लिया जाता है और इस तरह उसकी संपुष्टि कन्फर्मेशन नहीं हो पाती है। पैराग्राफ चेंज 14, परिणाम का सामान्यकरण करना, जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग्स। प्रयोग के इस अंतिम चरण में प्रयोगकर्ता एक प्रतिदर्श सैंपल पर किए अध्ययन से प्राप्त परिणाम को उस पूरे जीव संख्या पॉपुलेशन के लिए सही ठहराना चाहता है जिसे प्रयोज्यों का अर्थात प्रतिदर्श सैंपल का चयन किया गया था। प्रयोग का परिणाम कहाँ तक जीव संख्या पॉपुलेशन के लिए सामान्यकृत जनरलाइज किया जाता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि जीव संख्या को प्रयोगकर्ता ने कहाँ तक स्पष्ट परिभाषित किया तथा साथ ही साथ उससे प्रतिदर्श का चयन यादृच्छिक ढंग से रैंडमली किया था या नहीं। यदि जीव संख्या स्पष्टतः परिभाषित किया गया होता है तथा उससे प्रतिदर्श का चयन यादृच्छिक ढंग से किया गया होता है तब तो परिणाम का सामान्यकरण पूरे विश्वास के साथ किया जा सकता है, अर्थात परिणाम मात्र प्रतिदर्श के लिए भी सही हो सकता है, जीव संख्या पॉपुलेशन के लिए नहीं। पैराग्राफ चेंज। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तथा शैक्षिक एजुकेशनल प्रयोग में कुल 14 चरण स्टेप हैं जो एक क्रम सीक्वेंस में प्रयोगकर्ता द्वारा अनुसरण किए जाते हैं। प्रयोग की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रयोगकर्ता कहाँ तक प्रत्येक चरण की ज़रूरतों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाया है। पैराग्राफ चेंज प्रयोगात्मक वैधता एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च तथा शैक्षिक शोध एजुकेशनल रिसर्च में प्रयोगात्मक शोध का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का आधार प्रयोग एक्सपेरिमेंट होता है जिसके द्वारा संबंधित क्षेत्र में ज्ञान के भंडार के विकास में वैज्ञानिक उचित योगदान करते हैं। प्रयोग एक्सपेरिमेंट द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान साइंटिफिक नॉलेज के भंडार में उचित योगदान हो सके इसके लिए यह आवश्यक है। प्रयोग में दो तरह की वैधता वैलिडिटी निश्चित रूप से हो, आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी तथा बाह्य वैधता एक्सटर्नल वैलिडिटी। पैराग्राफ चेंज आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी से तात्पर्य प्रयोगात्मक परिस्थिति एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में प्रयोगकर्ता द्वारा बहिरंग चरों एक्सट्रेनियस वेरिएबल को नियंत्रित करने की सीमा से होता है। यही सीमा जितनी ही अधिक होती है बहिरंग चरों का नियंत्रण उतना ही अधिक होता है तथा प्रयोग में आंतरिक वैधता एक्सटर्नल वैलिडिटी उतनी ही अधिक समझी जाती है। इस तरह के नियंत्रण के फलस्वरूप प्रयोगकर्ता यह निश्चित होकर कह पाता है कि प्रयोगात्मक परिस्थिति में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किए गए जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन का प्रभाव स्पष्ट रूप से डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा है। जो प्रयोगशाला लेबोरेटरी में किए जाते हैं उनमें आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी अधिक होती है तथा जो प्रयोग वास्तविक परिस्थिति रियलिस्टिक सिचुएशन या क्षेत्र फील्ड में किए जा रहे हैं उसमें आंतरिक वैधता कम होती है क्योंकि प्रयोगशाला में बहिरंग चरों का नियंत्रण अधिक से अधिक हो पाता है जबकि क्षेत्र फील्ड में इन चरों का नियंत्रण कई कारणों से कम हो पाता है। पैराग्राफ चेंज बाह्य वैधता एक्सटर्नल वैलिडिटी से तात्पर्य सामान्यकरण जनरलाइजेशन करने के लाभ से होता है। सामान्यकरण का अर्थ प्रयोग के प्राप्त परिणाम को जीव संख्या पॉपुलेशन के अधिक से अधिक सदस्यों के लिए सही ठहराने से होता है। जिस प्रयोग के परिणाम को जीव संख्या पॉपुलेशन के अधिक से अधिक लोगों के लिए सही माना जा सकता है, उसमें सामान्यीकरण जनरलाइजेशन का लाभ अधिक होता है तथा उसमें बाह्य वैधता एक्सटर्नल वैलिडिटी ये अधिकता समझी जाती है। प्रयोगशाला प्रयोग में आंतरिक वैधता एक्सटर्नल वैलिडिटी अधिक प्राप्त करने की ख्याल से जब प्रयोगात्मक नियंत्रण एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल को अधिक बढ़ाया जाता है तो प्रयोग में कृत्रिमता आर्टिफिशियलिटी अधिक बढ़ने लगती है और परिस्थिति वास्तविक रियलिटी से भिन्न होने लगती है, जिससे प्रयोग की बाह्य वैधता एक्सटर्नल वैलिडिटी में कमी आ जाती है। इससे दो अर्थ निकलता है। पहला तो यह है कि यदि प्रयोगात्मक परिस्थिति जीवन की वास्तविक परिस्थिति के समान होती है तो इस प्रयोग में बाह्य वैधता एक्सटर्नल वैलिडिटी अधिक होती है। शायद यही कारण है कि क्षेत्र प्रयोग फील्ड एक्सपेरिमेंट में बाह्य वैधता प्रयोगशाला प्रयोग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा यह कि प्रयोग की आंतरिक वैधता को यदि बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो उसकी बाह्य वैधता एक्सटर्नल वैलिडिटी पर बुरा असर पड़ता है। अतः इन दोनों में एक तरह का संतुलन बैलेंस का होना अनिवार्य है। पैराग्राफ चेंज। चूंकि कई ऐसे संदर्भ पर्सपेक्टिव्स हैं जिनसे प्रयोगकर्ता प्राप्त परिणाम का सामान्यीकृत करता है, अतः शोधकर्ताओं ने बाह्य वैधता एक्सटर्नल वैलिडिटी के दो आंतरिक पक्ष एडिशनल एस्पेक्ट्स पर भी विचार किया है, जो इस प्रकार हैं: एक, कालिक वैधता टेम्पोरल वैलिडिटी; दो, पारिस्थितिकीय वैधता इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इन दोनों का वर्णन इस प्रकार है: एक, कालिक वैधता टेम्पोरल वैलिडिटी। बाह्य वैधता का एक महत्वपूर्ण पहलू कालिक वैधता टेम्पोरल वैलिडिटी है, जिससे तात्पर्य इस बात से होता है कि किस सीमा तक अन्य समयावधियों के लिए प्राप्त परिणाम को सामान्यीकृत किया जा सकता है। कालिक वैधता के दो मुख्य अनुप्रयोग एप्लीकेशंस हैं। पहला, कालिक वैधता यह बतलाता है कि स्वतंत्र चर के निरूपण तथा आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल के मापन के बीच प्रेषित संबंध का सामान्यीकृत अन्य समय फ्रेम में किया जा सकता है। दूसरा, कोई भी अध्ययन एक खास महीना तथा साल में संपन्न किया जाता है। यहाँ कालिक वैधता यह बतलाता है कि सब प्राप्त परिणाम अन्य महीना एवं साल में भी सामान्यीकृत किया जा सकता है। कालिक वैधता के संप्रत्यय को एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझाया जा सकता है: मौलिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जैसे स्मृति, चिंतन, अधिगम, संवेग, जिनका अध्ययन पिछले कई वर्ष पहले किया गया था, वर्तमान के लिए भी लगभग सही पाए गए, परंतु कुछ सामाजिक प्रक्रियाओं सोशल प्रोसेसेस का अध्ययन जैसे मनोवृत्ति एटीट्यूड्स एवं अन्य संबंध व्यवहार बिहेवियर्स जो सामाजिक मूल्यों एवं परिवर्तनों चेंजेस से प्रभावित होते हैं और जिनका अध्ययन बहुत पहले किया गया था, आज के समाज में तुलनात्मक रूप से कम सही दिखते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि पहली परिस्थिति में कालिक वैधता अधिक है जबकि दूसरी परिस्थिति में कालिक वैधता कम है। पैराग्राफ चेंज। दो, पारिस्थितिकीय वैधता इकोलॉजिकल वैलिडिटी। जब भी शोधकर्ता प्राप्त परिणाम रिजल्ट्स का सामान्यीकृत करता है तो वैसी परिस्थिति में उसे इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि स्वतंत्र चर आश्रित चर तथा प्रयोग की संपूर्ण परिस्थिति कहाँ तक प्राणी के स्वाभाविक व्यवहार तथा स्वाभाविक परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतिनिधित्व जितना ही अधिक होता है पारिस्थितिकीय वैधता भी उतना ही अधिक होती है। अतः पारिस्थितिकीय वैधता से तात्पर्य उस सीमा से होता है जिसमें प्रायोगिक परिस्थिति का सामान्यीकरण स्वाभाविक परिस्थिति तथा व्यवहार के प्रति सामान्यीकृत किया जा सकता है। पारिस्थितिकीय वैधता को एक उदाहरण से इस प्रकार समझाया जा सकता है: युधिमत साक्षर्य अधिगम पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग की विधि से किए गए प्रयोगों में प्रायः प्रयोज्यों को निरर्थक पदों के बीच साहचर्य स्थापित करना सीखना होता है, जो स्पष्टतः एक ऐसी असाधारण अधिगम प्रक्रिया है जो सिर्फ प्रयोगशाला ही होता है तथा दिन प्रतिदिन की वास्तविक जिंदगी में नहीं होता है। अतः ऐसे शोधों की पारिस्थितिकीय वैधता कम होती है। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जैसे जैसे शोधकर्ता आंतरिक वैधता की प्राप्ति की अधिक कोशिश करता है, वह शोध की पारिस्थितिकीय वैधता को खोता जाता है। पैराग्राफ चेंज। प्रत्येक शोध प्रयोगात्मक परिस्थिति में सामाजिक एवं भौतिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसे संकेत क्लूज देती है जो प्रयोज्यों के सामने एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने की मांग पड़ती है। शोध में इन संकेतों को मांग विशेषता डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। अतः मांग विशेषता को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा संकेत क्लू है जो शोध संदर्भ रिसर्च कॉन्टेक्स्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और जो प्रयोज्यों की अनुक्रियाओं को पूर्वाग्रहित बायस करता है। मांग विशेषताओं पर प्रयोज्य भरोसा करके ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है, प्रयोगात्मक परिस्थिति में क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, हमारी अनुक्रिया की व्याख्या कैसी की जाएगी आदि आदि। शोधकर्ताओं ने इन मांग विशेषताओं को अध्ययन के चार तत्वों के रूप में श्रेणीकृत किया है। प्रयोज्य वातावरण जिसमें अध्ययन किया जाता है, मापन विधि तथा स्वयं प्रयोगकर्ता। इन चार स्रोतों से उन्हें ऐसे संकेत मिलते हैं जिनके कारण वे अपने अनुक्रिया में परिवर्तन कर देते हैं। मांग विशेषताओं से प्रयोग की आंतरिक वैधता तथा बाह्य वैधता दोनों ही कुप्रभावित होती है। शोध मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षकों ने कुछ वैसे कारकों का वर्णन किया है जिनसे प्रयोग की आंतरिक वैधता तथा बाह्य वैधता दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आंतरिक वैधता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नांकित हैं।